Thank you. अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियरम दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी गौरांगा हरे कृष्णा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक त्योहार बहुत निकट आ रहा है। जानते हैं क्या कौन सा त्योहार निकट आ रहा है? गीता जयंती का त्यौहार निकट आ रहा है। मोक्षता एकादशी, अगली जो एकादशी आने वाली है 2 तारीख को मंगलवार को, ये जो है मोक्षता एकादशी के नाम से है, और ये जो है गीता जयंती का दिन है। इस दिन भगवान जो है अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देते हैं। तो बहुत विशेष दिन आ रहा है, और अभी हम इस एक एक श्लोक करके 10वां अध्याय पूरा कर चुके हैं। तो हम 10वें अध्याय का महात्म सुनेंगे। प्रत्येक अध्याय का महात्म मिलता है पद्म पुराण के उत्तरखंड में। गीता के एक एक अध्याय की महात्म की बड़ी सुंदर कथा है ना। तो जब हम लोग 10वें अध्याय के महात्म को सुनेंगे तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, सुनने का बहुत फल है। आप समझ रहे हैं, सुनने का ही बहुत फल है ना। और सुनने में कुछ नुकसान नहीं है, आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा है, लेकिन समय देना पड़ेगा, अपना ध्यान देना पड़ेगा। तो शिव जी सुना रहे हैं ये कथा, शिव जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? पार्वती। कहते हैं, हे सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म की परम पावन कथा सुनो। सोचिए कितनी पवित्र कथा होगी 10वें अध्याय के महात्म की, है जो स्वर्ग जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। 10वां अध्याय बहुत ही पवित्र है। काशीपुरी में सुन रहे सब लोग, काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था। क्या नाम था ब्राह्मण का? धीर बुद्धि। कहाँ पर रहता था? काशीपुरी में रहता था। जो मुझ में नंदी के समान भक्ति रखता था। नंदी शिव जी के बैल हैं, तो मुझ में भक्ति रखता था, शिव जी में भक्ति रखता था। कैसे? नंदी के समान भक्ति रखता था। वो शांत चित्त था, हिंसा कठोरता से दूर रहने वाला था। कौन? ब्राह्मण। क्या नाम था ब्राह्मण का? धीर बुद्धि। जितेंद्रिय होने के कारण निवृत्ति मार्ग में स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वो संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था, उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में लगा रहता था, वो मन को लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वो चलने लगता तब मैं प्रेम बस उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। शिव जी कह रहे हैं जब वो चलता था तो मैं उसके पीछे दौड़ दौड़ करके हाथ का सहारा देता रहता था। ये देख करके मेरे पार्षद भृंगी रेटी ने पूछा, भृंगी भी शिव जी के पार्षद हैं, तो ये देख करके मेरे पार्षद भृंगी ने मुझसे पूछा कि हे देव, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप ही किया है, होम किया है अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? शिव जी से पूछ रहा है उनका पार्षद भृंगी रेड्डी, उनसे पूछ रहे हैं। भृंगी रेड्डी का ये प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। तो शिव जी जो है कह रहे हैं कि मैंने भृंगी रेड्डी को उत्तर दिया, है ना। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पास पुन्नाग वन के भीतर भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। शिव जी बता रहे हैं कि मैं बैठा था समझो कैलाश पर्वत में ही एक स्थान में मैं बैठा था। कौन बैठे थे? शिव जी बैठे थे। और मेरे क्षण भर बैठने के बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी, वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी, कितनी टहनियां टूट टूट कर बिखर गईं, पर्वत की छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां भयंकर महान भयंकर शब्द हुआ जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तब आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, इतना विशाल पक्षी की मतलब कितनी तेज से हवा चल रही उस पक्षी के कारण, आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा जिसकी कांति काले मेघ के समान थी, वो कज्जल के समान या काले पर्वत जैसा जान पड़ता था, कज्जल के पर्वत के समान जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया, उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया, किसको? शिव जी को प्रणाम किया। एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करने आरंभ कर दी। एक कमल मेरे चरणों में रखा और स्तुति करने लगा। पक्षी बोला, हे देव, आपकी जय हो, आप जगत के पालक हैं, सदा सद्भाव रस युक्त हैं, अनासक्ति से भरे हैं, आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है, आपकी जय हो। आप तीन प्रकार के मलों से रहते हैं, आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन हैं और ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है, आप अविद्या से रहते हैं, नित्य मुक्त हैं और अहंकार शून्य है, आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है, आपने अपने ललाट की विष ज्वाला से कामदेव को भस्म किया, आपके जय हो, आपको बार बार नमस्कार है, आप त्रिभुवन रूपधारी को प्रणाम है, मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो अपार भाव समुद्र के पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते, हजार मुख वाले शेष में भी इतनी चातुरी नहीं कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें, फिर मेरे जैसे बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसाथी क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस सूत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, हे पक्षी, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है मगर रंग कौवे जैसा। आकृति हंस जैसी है लेकिन रंग कौवे जैसा है, तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, हे देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। कौन कौन है? ब्रह्मा जी का हंस। ब्रह्मा जी हंस पर सवार होके चलते हैं ना। तो पक्षी क्या बोला, मैं कौन हूं?
ब्रह्मा जी का हंस।
ब्रह्मा जी का हंस, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय काली मां आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, तथापि यदि आप पूछते हैं तो मैं बतलाता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, सूरत, सूरत नगर है ना, है सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं। उसी में से श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उसमें से सफेद सफेद मृणाल लेकर के अपने चोंच में मैं बहुत तेजी से उड़ रहा था। पर सरोवर में मृणाल कमल की होते ना, उनको लेकर के तीव्र गति से उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा, मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया, मुझे होश भी नहीं रहा कि मैं गिर गया हूं, जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण ना देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो ये क्या हो गया मुझे, आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में ये कालिमा कैसे आ गई। मेरा जो शरीर है कपूर के समान सफेद, भाई काला हो गया। जब होश आया देखो उड़ते उड़ते गिर, मतलब नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। जब होश आया ये क्या हो गया, मेरा शरीर एकदम काला हो गया। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि इस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी। वहां पर कमल जो खिले थे उनमें से वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने का और काले होने का कारण बताती हूँ। तमें उठकर सरोवर के बीच में गया और वहां पांच कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। सरोवर में एक कमलिनी, पांच कमलों से युक्त कमलिनी, कमलिनी को देखा, उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो, उसी पाप के परिणाम बस तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है। तुमने आकाश से मुझे लांगा, इसके परिणाम से तुम्हें गिरना पड़ा और उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई, तुम गिर गए तो मुझे दया आई। और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर मैंने बोलना शुरू किया तो मुख की सुगंध को सूंघकर 60,000 भौरे स्वर्गलोक चले गए। 60,000 भौरे स्वर्ग चले गए हैं उस मैंने बोला तो सुगंध से 60,000 भौरे स्वर्ग लोक को चले गए। पक्षीराज जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया है उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में, ये जन्म मेरा कमलनी का हुआ है, इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। किस रूप में, ब्राह्मण की कन्या के रूप में। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था, सरोज वदना। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है कि मैं एक मैना को पढ़ा रही थी, इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। मैना को पढ़ा रही थी तो पति सेवा में विलंब हो गया, इससे पति देवता कुपित हो गए। उन्होंने साप दिया, पापनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई तथापि पातिव्रत के प्रभाव से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल विभूत योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पाप हर अध्याय को सुना करती थी। हे पक्षी, काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्ग लोक में अप्सरा हुई और मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचरण कर रही थी, उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणी सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी। इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ आरंभ की, अकेली थी इस सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगी, क्यों ही दुर्वासा मुनि आ गए। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया, उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर दो कमल हुए, दोनों हाथ भी दो कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हो गया। पांच कमल का जो है मैंने शरीर धारण कर लिया। इस प्रकार मैं पांच कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा, उनके नेत्र क्रोध अग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापनी तो इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। ये साप देकर वे क्षण भर में अंतर्धान हो गए। कमलनी होने पर भी विभूत योग अध्याय के महात्म से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। ये 10वां अध्याय का पाठ सुनती थी ना, तो मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांगने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहां खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे साप की निवृत्ति हो रही है। मेरा 100 साल पूरा हो गया है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो, उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यूं कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वो मुक्त हो गई। उससे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। पक्षी कह रहा है, इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शिशु अवस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। पिछला जो उसका अभ्यास है तो बचपन से ही 10वां अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय की अर्थ चिंतन का ये परिणाम हुआ है कि ये संघ चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। 10वें अध्याय के प्रभाव से ये हमेशा समस्त प्राणियों में स्थित संघ चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेह पूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, स्नेह से देख ले किसी के ऊपर, तो वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारी क्यों ना हो मुक्त हो जाता है। और पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है और इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूं। शिव जी जो है भगवान विष्णु के भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, है ना। तो शिव जी कहते हैं कि जब ये चलने लगता है तो मैं इसे अपने हाथ का सहारा दिए रहता हूं। भृंगी रिटे, ये सब 10वें अध्याय की ही महिमा महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगी रीति के सामने जो पापनाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है।
हरिवो।
तो ये हमने जो है 10वें अध्याय का महात्म पढ़ के सुनाया और अब विशेष कथा हम सुनेंगे आनंद वृंदावन चंपू से, क्योंकि ये जो समय है ये कात्यायनी व्रत का चल रहा है, मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, जिसमें व्रज की कन्याओं ने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी व्रत किया था। तो कुछ दिन पहले हमने इस ग्रंथ से कुछ कथा सुनी थी, तो जहाँ तक सुनी थी उसके आगे मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग सुने ध्यान से। ये जो व्रज की कन्याएं हैं ये कात्यायनी का पूजन करती हैं, रोज कात्यायनी से प्रार्थना करते हैं, है ना। तो वो प्रार्थना जो है उनकी बड़ी दिव्य है। तो वो क्या कहती हैं, हे देवी, सर्वशक्तिमान महाविष्णु की तुम योग माया नामक उत्तम शक्ति हो, इसलिए हमारी दृष्टि में तुम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रतीत हो रही हो। अर्थात तुम तो होनी अनहोनी को सबको उलट पलट कर देने में समर्थ हो। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम का मतलब है होनी अनहोनी को सबको उलट पलट कर सकती हो, है। अतः श्री कृष्ण से हमारा संयोग कराना आपके लिए कोई दुष्कर कार्य नहीं है। दुष्कर कार्य भी आपके लिए दुष्कर नहीं है, आप कर सकते हो ना। प्रभु विष्णु और महाविष्णु योग शक्ति स्तुमोत्तम भाषि कर तुम कर तुम चा यथा कर तुम अपीश्वरी। तुष्टि पुष्टि शांति एवं छांति, छांति यानी सहनशीलता, तुष्टि पुष्टि शांति एवं छांति, ये सब तुम ही हो, अर्थात ये सब तुम्हारे स्वरूप हैं। एवं मनुष्यों को बंधन और मोक्ष देने वाली अविद्या और विद्या भी तुम ही हो, हैं। अविद्या यानी माया के द्वारा मनुष्यों को बंधन देने वाली हो और भक्ति के द्वारा मोक्ष देने वाली हो, अर्थात आपकी आपके रुष्ट होने से जीवों का बंधन होता है और आपकी कृपा से जीवों की मुक्ति होती है। तुमेव तुष्टि पुष्टिश्चाम त्वं शांति छांदिरेव चाम त्वं अविद्या च विद्या च बंध मोक्ष करीणाम। हे माता, हे सर्वाणी, तुम तो सबको मोक्ष देने वाली हो, क्योंकि आपकी कटाक्ष मात्र से समस्त जगत अर्थात अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं। माता सर्वाणि सर्वाणि जगन्ति तुन्न पांगतः उन्मीलन्ति निमीलन्ति भवन्ति विभवन्ति च। हे देवी, आप तो समस्त प्रकार के मंगलों के मस्तक पर विराजमान हो, अतः आपकी आज्ञा देवताओं के मस्तक पर भी रहती है। आपकी आज्ञा देवताओं के मस्तक पर भी रहती है। सर्वमंगल मूर्धन्ये मूर्धन्ये देव कसाम तवाज्ञा चा समज्ञा चा राजहंसी वे राजते। तुम तो पर से भी परतर हो, परम वैष्णवी हो, अतः श्री कृष्ण सेवा परायण हो। कौन? कात्यायनी देवी हैं, परोपकार में लगी रहती हो। हे परमेश्वरी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। परात परतरे कृष्ण परे परम वैष्णवी परोपकार परमे परमेश्वरी ते नमः। तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो और समस्त प्राणी मात्र के मन की बात जानती हो, अतः हे देवी, हम सब कन्याओं के लिए श्री नंद नंदन को ही पति रूप में दे दीजिए, हमें प्रदान कीजिए। किसको? नंद नंदन प्रदान कीजिए। किस रूप में? पति के रूप में प्रदान कीजिए। मनोज्ञासी मनोज्ञासी तुम सर्वस्व देहिना पति रूपेण देवी गोपेंद्र नंदनम। इस प्रकार उन कन्याओं ने अपनी रुचि के अनुसार परम मनोहरता पूर्वक बहुत देर तक देवी की स्तुति करके और प्रणाम करने के बाद वो देवी यमुना जी में ही विसर्जन कर दी। यमुना जी की मिट्टी से बनाई थी, तो देवी की बहुत देर तक स्तुति प्रार्थना करते करके यमुना जी में विसर्जन कर दिया। इसी प्रकार प्रतिदिन विनष्ट न होने वाली उत्कंठा से युक्त श्री कृष्ण के गुणों को अपने कंठा के भूषण बनाने वाली, श्री कृष्ण के गुणों को अपने कंठ का भूषण बनाने वाली उन कन्याओं ने पूजा के द्वारा भगवती अंबिका कात्यायनी को एक महीना तक लगातार प्रसन्न कराते हुए अपने चित्त को भी उनके प्रति पहुंचाते हुए वो प्रसन्नता करवा ली। अर्थात उस प्रकार की लोकोत्तर भक्ति के द्वारा वशीभूत हुई देवी ने उनके ऊपर कृपा कर दी। देवी ने क्या कर दिया? कृपा कर दी, कृपा कर दी। अब अगर प्रश्न करें, कोई प्रश्न करे कि ये ब्रज कुमारियां तो नित्य सिद्धा कृष्ण की कांता हैं, उनको अपने संकल्प की सिद्धि के लिए योग माया की आराधना करने की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर यही है कि उनकी लीला है। यद यदा चरति श्रेष्ठस्तत्ते वेतरो जना, लोक शिक्षा के लिए, संसार को शिक्षा देने के लिए ये पूजा कर रही है। इसलिए उन कन्याओं के उतने परिश्रम मात्र से बस में होने वाली विशुद्ध हृदय वाली दयालुता के कारण परम प्रसन्न होकर सौभाग्यशाली ने वो भगवती देवी हर्ष पूर्वक प्रत्येक कन्या के मन में प्रकट हो गई। वो देवी कहाँ प्रकट हुई? प्रत्येक कन्या के मन में प्रकट हुई और प्रकट होकर महान आदर पूर्वक बोली, आई मंगलमयी कन्याओं। देवी बोली, आई मंगलमयी कन्याओं, आप सब तो भगवान श्री कृष्ण की प्रीति की देवता हो, पहले से ही तुम्हें प्रीति प्राप्त है, अतः आप सब दूसरे देवता की आराधना करने के योग्य नहीं हो, अर्थात आपको दूसरे देवता की आराधना की आवश्यकता नहीं है। देवी बोली, क्योंकि लक्ष्मी ने तो श्री कृष्ण से ये प्रार्थना की थी कि मैं तो गोपी रूप में अवतीर्ण होकर आपके साथ विहार करना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी ने भी प्रार्थना की थी। इस प्रकार की लक्ष्मी की कामना के सुख को तुम देने वाले हो, तुम तो लक्ष्मी की भी कामना पूरी करने वाली हो। लक्ष्मी तक कामना करती है कि ब्रज में गोपी होकर के कृष्ण के साथ में विहार करूं, तो तुम तो लक्ष्मी की कामना को भी पूरी कर सकती हो। इसलिए आप जैसी नित्य सिद्ध श्री कृष्ण कांताएं लक्ष्मी की कामना से दूसरे देवता की आराधना नहीं करती हैं। तुम तो लक्ष्मी की भी कामना पूरी कर सकती हो, फिर लक्ष्मी की कामना से तुम दूसरे देवता की आराधना क्यों करोगी? तथापि निष्कपट भाव से मेरी आराधना रूप तुम्हारा जो ये कर्म है वो केवल तुम्हारी बढ़ती हुई उत्कंठा के कारण है। ये तो मेरे यश को बढ़ाने के लिए है, तुमने मेरा यश बढ़ाया है, अतः हे कन्याओं, तुम्हारे लिए अतिशय शीघ्रता पूर्वक और सुंदरता पूर्वक ही श्री कृष्ण की निकटता का लाभ हो जाएगा। अति शीघ्रता पूर्वक और सुंदरता पूर्वक कृष्ण की निकटता का लाभ हो जाएगा, इससे आगे तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। किसने कहा? देवी ने कहा। किसने कहा? ब्रज की कन्याओं से कहा। इस प्रकार कहते ही वो देवी सभी के अंतःकरण से तिरोहित हो गई। उन कन्याओं को का इस प्रकार का विशेष अनुभव उन कन्याओं का इस प्रकार का अनुभव विशेष करके उत्पन्न हो गया। उस प्रकार के अनुभव के साक्षी उनके नेत्र हो गए। ये सब बाएं अंग फड़कने लगे। स्त्रियों के बाएं अंग फड़कते हैं तो शुभ लक्षण है, तो उनको कृष्ण की प्राप्ति होगी। देवी ने वरदान दिया है ना, तो ये मन में ही जो है देवी प्रकट हुई थी, तो उनको कुछ शंका रही, कुछ शंका बनी रही, तो शंका दूर करने के लिए क्या हुआ, उनके शरीर के बाएं अंग फड़कने लगे, नेत्र, भुजा, जंघा, ये सब बाम अंग फड़कने लगे। मानो निश्चित अपने हृदय में आश्वासन प्राप्त हो गया, श्री कृष्ण के साथ उनके रमण की योजना का मनोरथ हस्तगत ही हो गया है। ये बात मानकर भी उन कन्याओं ने ये कात्यायनी का व्रत एक महीना तक पूरा करके ही समाप्त करना चाहिए ये निर्णय कर लिया। कात्यायनी से तो वरदान प्राप्त हो गया, निश्चित है कृष्ण की प्राप्ति होनी है, और महीना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने निर्णय किया कि हम पूरा महीना करेंगी, अब करने की जरूरत नहीं है, कात्यायनी तो प्रसन्न हो गई हैं और वरदान दे दिया है और हमारे बाएं अंग फड़क रहे हैं कि कृष्ण की प्राप्ति होगी, लेकिन अभी करेंगी, पूरा महीना करेंगी, पूरा करेंगी। तब महीना की समाप्ति वाले दिन महीना समाप्त होगा 6 दिसंबर को, पूर्णिमा मार्गशीर्ष पूर्णिमा आएगी। समाप्ति वाले दिन सूर्य के उदय हो जाने पर, सूर्य का उदय हुआ तो कमलनी खिली तो किसी आनंद की सुंदरता से युक्त होकर वे कन्याएं पहले दिनों की अपेक्षा शोभा से युक्त देवी की पूजा करके अति से आनंद से युक्त होकर व्रत को समाप्त करके मानो अपने अपने को भली प्रकार प्राप्त हुए तपस्या के फल से युक्त होकर परस्पर के नमस्कार करने से उत्पन्न हुए हर्ष के कारण, एक दूसरे को नमस्कार करके जो उत्पन्न हुआ हर्ष उसके कारण मानो अवभृत स्नान करने के लिए सखियों के साथ मिलकर यमुना जी में विहार करने लगे। अवभृत स्नान यज्ञ की पूर्णा होने के बाद जो किया जाता है स्नान, तो मानो अवभृत स्नान कर रही हैं तो सखियों के साथ मिलकर यमुना जी में विहार करने की इच्छा से युक्त होकर कात्यायनी देवी द्वारा पहले ही उनको कृपा प्राप्त हो चुकी है। तो अपने वस्त्रों को तट पर रख करके यमुना जल में लीला पूर्वक कूद पड़ी। जल का आश्रय लेकर परस्पर परम कौतूहल से हलन करती हैं, हरम है खींचती हैं एक दूसरे को, खेलना है ना, जल में खेलती हैं तो परस्पर एक दूसरे को खींचती हैं या घसीटती हैं। और इस प्रकार से सुंदरता से शोभायमान मन वाली ये कन्याएं सूर्य की किरणों के कारण शीत से ज़्यादा भयभीत नहीं हो रही हैं। ये सूर्योदय हो गया है तो ठंडे तो है लेकिन ज़्यादा भयभीत नहीं हो रही हैं क्योंकि सूर्योदय भी हो गया है तो क्षण भर विहार करती हुई शोभा पाने लगी। इसी दिन अब आज के दिन कृष्ण ने एक दिन पहले से निश्चित विचार कर लिया था कि आज के दिन गोचारण करना है यहाँ पर, तो एक दिन पहले से ही निश्चित कर लिया था कृष्ण ने आज के दिन के लिए कि इस स्थान पर गोचारण करना है पहले ही अर्थात कल उस जगह गोचारण करेंगे। इस प्रकार के निश्चित विचार से युक्त गोचारण के स्थल की ओर चल देने से श्री कृष्ण के दर्शन की प्रसन्नता से पक्षी आकाश में चहचह कर रहे हैं। कृष्ण के दर्शन की प्रसन्नता के कारण पक्षी आकाश में क्या कर रहे हैं, चहचह कर रहे हैं और कपट से रहित प्रेम वाले बलदेव आदि प्रिय सखाओं द्वारा गऊओं के पीछे पीछे बाधा रहित हो गए हैं। कृष्ण की बाधा दूर हो गई है, इस स्थान के आने में की बाधा दूर हो गई। बलदेव जी आदि जितने सखा हैं वो पीछे रह गए हैं और कृष्ण आ गए हैं, तो कृष्ण चाहते भी हैं एकांत में यहाँ पर आना, तो बलदेव जी जो है गऊओं को चराते हुए पीछे रह गए हैं और कृष्ण स्थान में आ गए हैं तो बाधा से रहे। तो तब योगेश्वरों के भी ईश्वर वही ब्रजराज किशोर, कौन है, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं ब्रजराज किशोर। योगेश्वर उनको कहते हैं जिनके अंदर स्त्री पुरुष का जो है आकर्षण नहीं होता है, योगेश्वर उनके भी ईश्वर हैं कृष्ण, मतलब कितने पवित्र हैं, है ना, ये जो लीला है उनकी पवित्र है, बहुत पवित्र है, इसलिए कहा गया योगेश्वरों के भी ईश्वर ब्रजराज किशोर प्रातःकाल अपने मुख चंद्र की शोभा से मुरली को भली प्रकार से धो करके, मुख चंद्र के रस से मुरली को धो करके यानी बंसी बजा करके मधुरता पूर्वक मुरली बजाकर स्वतंत्र होकर भी कात्यायनी व्रत परायण कन्याओं के द्वारा प्रीतम सुख के कारण उनके वशवर्ती होकर अवश्य में वो उनकी ओर दृष्टिपात करके उन कन्याओं के गुणों को अपने कंठ का आभरण बनाया। उनके कन्याओं का गुण मतलब भगवान कृष्ण अपने कंठ में धारण करते हैं। गोचारण सुख को छोड़ करके, गऊओं को चराने का भी जो सुख है उसको छोड़ करके और मित्रों के संग से उत्पन्न होने वाले सुख को भी छोड़ करके आए। कृष्ण को जो है जो सुख प्राप्त होता है गौचारण का उसको भी छोड़ दिया, और मित्रों के साथ भी जो सुख प्राप्त होता है उसको भी छोड़ दिया, और कहाँ पर आए हैं, इन कन्याओं के पास आए हैं। और जिनका अपूर्व अनुराग वर्ष भर से बढ़ चुका था उन कन्याओं की उत्कंठा से उत्पन्न हुई है? उन कन्याओं की उत्कंठा भी है किसका दर्शन करने की। तो विशुद्ध अंतःकरण वाले छोटे छोटे चार बालकों के साथ अलक्षित होकर यहां पर आए। तो कृष्ण के साथ में चार छोटे छोटे बालक हैं, है ना। कात्यायनी देवी के वरदान को हल्का करने के लिए, मतलब पूरा करने के लिए, उन कन्याओं के सौभाग्य के गौरव को बढ़ाने के लिए और अपने चातुर्य को प्रकट करने के लिए वहाँ गुप्त रूप से आ गए। भगवान का कितना सुंदर वर्णन है ना, भगवान आए हैं, है ना। गोपाल चंपू में लिखा है कि जो चार सखा थे कृष्ण के छोटी छोटी अवस्था के, उनके नाम कौन है, उनके नाम है दाम सुदाम वसुदाम और किंकिणी। ये चार जो है छोटे छोटे बालक हैं कृष्ण के साथ में, दाम सुदाम वसुदाम और किंकिणी नाम वाले चार सखा श्री कृष्ण के साथ वस्त्र हरण लीला में आए थे। उनको तंत्र शास्त्र के विज्ञाता जन श्री कृष्ण के मन बुद्धि चित्त अहंकार मानते हैं। कृष्ण के मन बुद्धि चित्त अहंकार ही हैं ये चार बालक। चार अंतःकरण होते ना भगवान के, चार अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो यही जो है ये चार बालक कृष्ण के यही हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। ऐसा ये चारों कुमार 4-5 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, 4-5 वर्ष के थे। परस्पर मित्रता के कारण हर्ष को धारण करने वाले थे एवं श्री कृष्ण से प्रतिदिन प्रेम की वर्षा प्राप्त करते थे। ये चार बालक जो है श्री कृष्ण से प्रतिदिन क्या प्राप्त करते थे, प्रेम की वर्षा प्राप्त करते थे। अतः यमुना तट पर चलने के आरंभ से ही भैया हम कहाँ चलें, इस प्रकार श्री कृष्ण से पूछते हुए चलते चलते उनके साथ वहां पर चले आए। क्या पूछते हैं, भैया हम कहाँ चले हैं, 4-5 वर्ष के बालक हैं, पूछते पूछते कृष्ण के साथ आ गए। ये ब्रजराज किशोर यहाँ आकर कृष्ण होकर भी रक्त हो रहे हैं। कृष्ण होकर भी क्या हो रहे हैं, रक्त हो रहे हैं, है ना। श्याम सुंदर होकर भी गोप कुमारियों में अनुरक्त है, है ना। श्याम सुंदर मतलब श्याम सुंदर है, रंग उनका श्यामल है, लेकिन अभी क्या हो गए हैं, रक्त हो गए हैं, रक्त मतलब अनुरक्त हो गए हैं। लाल नहीं, लेकिन एक अर्थ होता है लाल, तो लाल तो नहीं है लेकिन रक्त वर्ण के हो गए हैं, यानी अनुरक्त हो गए हैं। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने केशों को बांधा। वस्त्र हरण करने के लिए क्या किया कृष्ण ने, कृष्ण की बड़ी शोभा है, कृष्ण ने अपने केशों को बांधा, फिर पीतांबर की फेंट कसी, फिर नूपुरों को गूंगा बनाया। नूपुरों की आवाज होगी ना तो इनका पता चल जाएगा ना कि चोरी हो रही है, तो चोरी का पता ना चले, है ना। तो नूपुरों को गूंगा बनाकर अपनी भौहों के इशारे से अपने साथ में आने वाले सखाओं की बातचीत को बारंबार रोका। बात नहीं करना, चुप रहना है, आवाज नहीं। तो कृष्ण जो है अपने भौहों के सहारे से अपने सखाओं की बातचीत को बारंबार रोकते हुए शरीर को झुकाकर कातर नयन होकर अपने अंग को अपने अंगों के द्वारा छिपाते हुए गुप्त रूप से मुस्काकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। बहुत सुंदर वर्णन है। इस प्रकार अपने को चोर बनाकर चंचलता सरलता और अतिशय साधुता को अंगीकार करके श्री कृष्ण अपार गंभीर बनकर निर्भय होकर शक्ति पूर्वक संपूर्ण वस्त्रों को चुराकर और अपने अंगों के द्वारा वस्त्रों को छिपाकर सभी शाखाओं को गूंगे बनाकर धीरे धीरे कदम्ब की शाखा पर चढ़कर उन गोपियों के सम्मुख प्रकाशित हो गए। अब अपने को प्रकट किया, अभी तक प्रकट नहीं किया, बिल्कुल चुप, सब कार्य जो है बिल्कुल चुपचाप किया, पता ना चले। अब प्रकट किया जब कदम्ब की शाखा पर आ गए। अच्छा देगा त्रह से सांबराणी मूंगी गिरता शेष वयस्य वर्गहाम सने सने रने पे भुजाधिरूढ़ तथा विमुख्यम हरि लुल्लसास हरि लुल्लास। इसके बाद सौभाग्य लक्ष्मी से प्रशंसित एवं लोकातीत वे कन्याएं यमुना जल से उतरने की इच्छा से युक्त होकर वस्त्रों से रहित तट पर दृष्टिपात करके, अब यमुना जल से उतरने की इच्छा मतलब बाहर आने की इच्छा, अब उनके अंदर इच्छा हुई यमुना जल से बाहर आने की इच्छा हुई, तो वस्त्रों से रहित तट को देखा, तट में वस्त्र नहीं है, चकित होकर विचार करने लगी। जब तट को देखा कि वस्त्र नहीं है तो चकित होकर विचार करने लगी, हाय ये क्या हुआ, हमारे वस्त्र किसने चुरा लिए, यहां पर तो सूर्य की किरणों के बिना दूसरे किसी व्यक्ति का आना नहीं है, यहां तो सूर्य की किरणों के बिना और किसी का आगमन नहीं है, हाँ केवल आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों के पैरों के चिन्ह हैं। पैरों के चिन्ह किसके हैं, पक्षियों के हैं जो आकाश में विचरण करते हैं, है? हाय इसलिए किसी व्यक्ति के चरण चिन्हों के अभाव के कारण यह अनुमान होता है कि हमारे वस्त्र किसी देवता ने ही चुरा कर कहीं पहुंचा दिए हैं। पैरों के निशान नहीं है, इसका मतलब है हरि बोल, पैरों के निशान नहीं है इसका मतलब है कि हमारे वस्त्रों को किसने चुराया होगा, किसी देवता ने चुराया होगा, क्योंकि देवता ही धरती पर चरण नहीं धरते हैं। देवता लोग जब चलते हैं तो धरती पर उनके पैर नहीं होते हैं, धरती से ऊपर उनके पैर होते हैं, धरती को नहीं छूते पैर देवताओं के। तो हमारे वस्त्र किसने चुराए, अवश्य किसी देवता ने चुराए, कि पैरों के निशान ही नहीं है ना। तो यहाँ पर पद पद के दर्शन का अभाव है, यानी चरण चिन्ह का अभाव है, पैर के निशान है ही नहीं। इस प्रकार चकित हुए चंचल नेत्रों वाली चारों ओर देखती हुई अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों तक विचार करती हुई और तरंगों में ऊपर ऊपर उछल उछल कर मछलियों की तरह व्याकुल हो गई। समस्त दिशाओं के मुख चारों ओर से व्याप्त कर लिए, सभी दिशाओं में देख रही हैं, सभी दिशाओं में अपना मुख जो है उन्होंने जो कर लिया। उसके बाद इन कन्याओं के शरीर में अतिशय विकलता की प्रबलता हो रही है, इन कन्याओं के शरीर में अतिशय विकलता की प्रबलता हो रही है, ये विचारते हुए श्री ब्रजराज युवराज करुणा से युक्त होकर यमुना के जल में प्रविष्ट हुई उन सुकुमारी कुल कुमारियों के प्रति परम सुंदर एवं मधु से भी मधुर स्पष्ट समझ में आने वाले स्वर से युक्त और स्वर्ग में भी जो अमृत नहीं है ऐसा अमृत से धुली हुई वाणी बोले। भगवान की वाणी कैसी है, उसमें इतना अमृत है कि स्वर्ग में भी नहीं है, ऐसी वाणी जो है भगवान बोले। श्री कृष्ण उस समय भूतलवासी प्राणी मात्र के संताप को हरने वाले थे और अनेक हार पहने हुए थे, संताप को हरने वाले थे समस्त प्राणियों के और अनेक हार पहने हुए थे और साथ में आए हुए बालक रूप मित्रगण को हास परिहास की सुंदरता पूर्वक विशेष हंसाते हुए अत्यंत प्रिय कदम्ब वृक्ष की मोटी शाखा पर चढ़ने से उत्पन्न होने वाली शोभा से युक्त थे। किसी दूसरे का सहारा ना लेने के कारण स्वाधीन थे अपने स्वाभाविक तेज के द्वारा सूर्य को भी तिरस्कृत कर रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण बोले, श्री कृष्ण बोले अरे ओ गोप कुमारियो, देखो तुम सब अपने अपने मन को ताप मत दो, अपने मन को ताप मत दो, अपने अपने को संताप मत दो, क्योंकि तुम सब मेरी लीला में लोभ रखती हो, क्योंकि तुम सब मेरी लीला में लोभ रखती हो, अतः मैंने ही कौतुक के कारण रसमय समय को पाकर तुम्हारी इस मनोवृत्ति को अपनी हितकारिणी बनाने के लिए तुम्हारे वस्त्र हर लिए। भगवान क्या कह रहे हैं, तुम इस बात का दुख मत मानो, तुम्हें सुख देने के ही लिए मैंने तुम्हारे वस्त्रों का हरण किया है। भगवान का प्रत्येक कार्य तो सुख देने के लिए, दुख देने के लिए थोड़ी है, हैं? इसलिए अपने अपने हार हमारी भेंट करके सुख पूर्वक एवं सरलता पूर्वक मेरी ओर आकर सभी सम्मिलित होकर अथवा एक एक होकर अपने अहंकार को छोड़कर अपने अपने श्रेष्ठ वस्त्रों को ग्रहण कर लो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अपने अपने हार हमारी भेंट करो, अपने हारों को हमारी भेंट करो और सुख पूर्वक सरसता पूर्वक मेरी ओर आकर सभी सम्मिलित होकर अथवा एक एक होकर अपने अहंकार को छोड़कर अपने अपने श्रेष्ठ वस्त्रों को ग्रहण कर लो, है ना। तो भगवान जो है उनका, भगवान का जो व्यवहार है वो बहुत कोमल है, भगवान का व्यवहार कठोर नहीं है। भगवान जो व्यवहार करते हैं, इस व्यवहार के द्वारा भगवान सुख नहीं लेते हैं बल्कि सुख देते हैं, है ना। इस भौतिक संसार में कोई पुरुष अगर ऐसा व्यवहार करता है, हैं, तो वो किसी स्त्री को छेड़ने के लिए करता है, उसको दुख पहुंचाने के लिए करता है, हैं, उसको परेशान करने के लिए करता है। तो इस भौतिक संसार में ऐसे जो व्यवहार हैं वो नहीं होते हैं जो भगवान के हैं। भगवान का जो व्यवहार है वो बहुत बहुत कोमल है, है ना। तो भगवान कितने कोमल तरीके से बोलते हैं, तो यहीं पर ही हम इस कथा को विराम देते हैं, लेकिन हमें मतलब समझना चाहिए कि ये भगवान की जो लीला है वो बहुत पवित्र है, भगवान का जो भाव है वो बहुत पवित्र है, इसमें उस प्रकार का भाव नहीं है जैसे भौतिक संसार में देखा जाता है, है ना। जैसे चीरहरण की लीला है ना, तो भगवान ने भी की और दुशासन ने भी चीरहरण किया, लेकिन इसमें दिन रात का अंतर है। दुशासन ने द्रौपदी को कठोर शब्दों का प्रयोग किया था, द्रौपदी से कठोर शब्दों का प्रयोग किया था, द्रौपदी का अपमान करने के लिए उसके वस्त्र हरण किए, हैं, और भरी सभा में पुरुषों की सभा में अकेली स्त्री को जो है नग्न करने का प्रयास किया, है ना। जबकि भगवान जो है कितना कोमल बोल रहे हैं उनके साथ में, और वे सब एकत्रित हैं, और भगवान से वो जो है इस प्रकार का संबंध पाना चाहती हैं, तो भगवान जो है उनका सुख बढ़ाने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो ये भाव है, एक भाव है जिसको कि गीता में भगवान कहते हैं सुखम आत्यंतिकम या तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये अतीन्द्र इंद्रियों से परे है ये सुख, आत्यंतिक सुख है, और ये तद बुद्धि यानी शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होता है। ये सुख जो है इंद्रियों का सुख नहीं है। भगवान ने जो वस्त्रों का हरण किया और जो बातचीत कर रहे हैं, तो वो जो सुख प्राप्त हो रहा है उनको भगवान की बातों का, तो वो एक इंद्रियों से परे है ये सुख, और ये शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होता है। कि कृष्ण हमारे पति हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं, पति को ही अधिकार है अपने पत्नी के साथ हंसी मजाक करने का, इस प्रकार से हंसी मजाक कर रहे हैं, तो ये जो भाव है तो ये उनका जो है एक आनंद है जो कि भगवान उनको प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें जो है भगवान का कोई मतलब दुर्भावना नहीं है, इसको समझना है। भगवान ने जो है जब वस्त्र हरण किए तो उससे उनकी वो जो तपस्या है वो पूरी हुई, उनकी तपस्या का फल प्राप्त हुआ है ना, भगवान उनके वस्त्रों का हरण किया, उनका सम्मान बढ़ा, भगवान उनके वस्त्रों का हरण किया इससे उनका सम्मान बढ़ गया है, उनका कितना बड़ा सम्मान कि भगवान ने वस्त्र दिए हमारे है ना, और फिर भगवान ने अपने हाथ से उनको वस्त्र दिए है ना, तो उनके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी, उनका सौभाग्य बढ़ गया है ना, मतलब बताइए लक्ष्मी जी को भी सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, लक्ष्मी जी मैंने भी जो है ऐसे सौभाग्य की कामना की और उनको भी वो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ जो सौभाग्य इन कन्याओं को प्राप्त हुआ है ना। तो इस प्रकार से हमें जो है इस लीला का स्मरण करना चाहिए, और इसके अलावा भगवद गीता का वितरण का ये समय है, प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करने का समय है, प्रभुपाद का संदेश जो प्रभुपाद के ग्रंथों में है भगवद गीता में है, तो उसको जो है जो लोग जो है पा चुके हैं, जिनको प्रभुपाद का संदेश मिला है, जिनको प्रभुपाद के ग्रंथ मिले हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, इन ग्रंथों को और आगे बढ़ाना चाहिए और आगे फैलाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि पृथ्वी ते आछी जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, पूरी पृथ्वी में जितने भी नगर गांव हैं सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा है ना। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी 550 साल पहले जो हुई थी अब वो कैसे पूरी होगी इसको तो कोई नहीं जानता था, लेकिन प्रभुपाद के ग्रंथों के द्वारा ही ये पूरी हो रही है। तो प्रभुपाद के ग्रंथों के द्वारा जहाँ जहाँ प्रभुपाद के ग्रंथ जाते हैं वहाँ वहाँ चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार होता है ना। तो इस कार्य में क्या है कि हमें और आपको निमित्त बनना है, जैसे कहते हैं भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन, ये सब मेरे द्वारा तो मारे गए हैं तुम तो केवल निमित्त मात्र बनो। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन पूरे संसार में फैल रहा है, उनकी इच्छा से फैलेगा, लेकिन हमें और आपको क्या करना है, निमित्त बनना है केवल, और निमित्त बनना है क्या, ये ग्रंथ केवल पहुँचाने हैं, आपको कुछ बोलना नहीं, आपको कुछ बताना नहीं है, आप बोल भी नहीं सकते, आप बता भी नहीं सकते, लेकिन अगर आपने ग्रंथ पहुंचा दिए तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि भगवान का संदेश जो है भगवद गीता में प्रभुपाद ने दिया है, भगवद गीता यथारूप के नाम से प्रभुपाद ने दिया है, और आप उनको पहुंचाते हैं तो आपने बहुत बड़ा काम किया, तो बहुत बड़ा काम है। आपका काम क्या है, पोस्टमैन की तरह, जैसे पोस्टमैन होता है तो वो क्या करता है, जो भी पत्र आया आपके संबंधी का उसमें पोस्टमैन कुछ भी बदलता नहीं है, ज्यों का त्यों पहुंचा देता है ना। उसी प्रकार से प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, अगर आप लोगों को देते हैं तो भगवान का संदेश उनको मिल जाता है ना। तो इसलिए आप लोग प्रभुपाद के ग्रंथ हैं और विशेष रूप से भगवद गीता का रूप बांटिए, और यही जो है आज का संदेश है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय, श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय, जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौणदाय सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो। हरे कृष्ण।